16 सितंबर दिन रविवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान की वजह से 14 लोगों की मौत।
Kaya lang may continuing hazards pa po tayong dapat pagandaan. Unang-una, yung balik ng hangin kasi counterclockwise.
जम्मू कश्मीर में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव अगले महीने।
कुछ राजनेता और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लैकमेलिंग कर रही थी। वो बॉयकॉट का डरावा दिखाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे।
असम के 6 जिलों में बाढ़ से हैं लोग बेहाल।
जब शाम होने लगा तो इतना स्पीड पानी आया था, हम लोग तो तीनों लेडीज थे घर पर, कुएं का जरिए हम गांव वालों को बुलाए।
उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा के साथ ही होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। फिलीपींस के उत्तरी इलाके में तबाही मचाने और कम से कम 14 लोगों की मौत के बाद मैंगकूट तूफान भारी जनसंख्या वाले चीनी प्रांत गुआंगडोंग की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के रास्ते में हांगकांग भी है और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान बारिश के साथ शहर के लिए खतरा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की हवाएं और 119 किलोमीटर प्रति घंटे के झोंकों की गति दर्ज की गई है। तूफान के बढ़ने से पानी का स्तर भी बढ़ जाता है और इसलिए बाढ़ आने की आशंका भी है। परिवहन सेवाएं अभी बंद हैं और 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं तूफान फ्लोरेंस की वजह से अमेरिका के उत्तरी और दक्षिण कैरोलिना राज्यों में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई। लगातार भारी बारिश ने नदी के स्तर को बढ़ा दिया जिससे बाढ़ आ गई। कई इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं। 8 लाख से अधिक घरों और दुकानों में बिजली गुल है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली की आपूर्ति बहाल करने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। 20,000 से अधिक लोगों को शेल्टर में रखा गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक हवा की रफ्तार लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में अरबों रुपए का सैटेलाइट भेजा है जो पता लगाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे धरती की बर्फीली परत घट रही है। रॉकेट आईसेट 2 नाम के सैटेलाइट को सीधे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाने के रास्ते पर रखेगा।
5, 4, 3, 2, 1 Lift off of the final Delta II, launching nearly 3 decades of science research and exploration missions, lifting ISAT-2.
पर पहुंचकर ये समुद्र और बर्फीली जमीन पर लेजर लाइट दागेगा और हर 70 सेंटीमीटर पर मापता रहेगा। जितनी तेजी से लाइट सैटेलाइट पर वापस आएगी, उसका मतलब बर्फ की परत मोटी है। नासा के वैज्ञानिक थॉमस वेगनर ने बीबीसी को बताया।
What's amazing is the laser never turns off, but the laser pulses.
सबसे अद्भुत बात है कि ये लेजर कभी बंद नहीं होती, बल्कि 1 सेकंड में 10,000 बार टकराती है। हम अब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फीली परतों पर हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा हम ये भी जान पाएंगे कि किस प्रक्रिया से वहाँ बदलाव हो रहे हैं और उसकी वजह से समुद्र के स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। नासा के वैज्ञानिक थॉमस वेगनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार या मंगलवार को लगभग 200 अरब डॉलर के चीनी आयात पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। अखबार इस मामले से परिचित स्रोतों का हवाला देते हुए कहता है कि टैरिफ 10% पर तय किया जाएगा। ये टैरिफ 25% के आंकड़े से काफी नीचे है, जिसके बारे में प्रशासन ने कहा था कि वह विचार कर रहा है। व्यापार में आए तनाव को कम करने को लेकर चर्चा के लिए अगले हफ्ते वॉशिंगटन में चीनी और अमरीकी प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। चीनी पक्ष उम्मीद कर रहा है कि उस बैठक तक नए टैरिफ नहीं आएंगे। दोनों देश पहले ही एक दूसरे पर 50 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ लगा चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने सिसिली की राजधानी पालेर्मो में माफिया के खिलाफ भाषण दिया है। इस शहर को माफिया की गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, इसलिए वहीं से उन्होंने माफिया के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने और पैसे के बारे में सोचना छोड़ें और उन्हें चेतावनी दी कि चाहे वे चर्च जाते हों, लेकिन वे ईसाइयों की तरह नहीं जी रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भगवान को भी माने और फिर माफिया भी हों। जो माफिया है वो ईसाई की तरह नहीं जी सकता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है। हमें आज मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए, सेवा करने वाले लोग चाहिए, दूसरों को दबाने वाले लोग नहीं। पोप फ्रांसिस के शब्द। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना की खबर है कि दमिश्क हवाई अड्डे के पास कई मिसाइलों को गिरा दिया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। फिलीपींस के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती तूफान की वजह से कम 14 लोग मारे गए हैं। ये तूफान अब चीन की ओर बढ़ रहा है। इस खबर पर और जानकारी सर्वप्रिया सांगवान की जुबानी।
उत्तरी फिलीपींस में शनिवार सुबह तेज हवाओं और जबरदस्त तूफान ने लोगों को झकझोर दिया। ये मैंगकूट तूफान की दस्तक थी। देखते ही देखते तूफान ने फिलीपींस के लुजोन द्वीप को तहस नहस कर डाला। घरों की छतें उड़ गई, बड़ी संख्या में पेड़ गिरे और 42 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। तूफान से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान, बारिश और बाढ़ के कारण 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फिलीपींस के रेड क्रॉस के चेयरमैन रिचर्ड गॉर्डन ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत सी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मक्के और धान के खेत तहस नहस हो गए हैं, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों पर तो अब छतें ही नहीं रहीं। इससे भी ज्यादा हम हवा और पानी से उजड़ गए हैं। मेरे ख्याल से अभी तो बस तूफान के प्रभाव की शुरुआत है, अगली दिक्कत तो बाढ़ होगी और उन इलाकों में पहुँच पाने की। विश्व मौसम संगठन ने इस तूफान को इस साल अभी तक दुनिया भर में आए तूफानों में से सबसे खतरनाक आंका है। इस तूफान की वजह से हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ये तूफान चीन की तरफ बढ़ रहा है। रविवार दोपहर तक ये तूफान हांगकांग की तरफ चला जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में चीन के तट से टकरा सकता है। फिलीपींस के आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव रिनेटो सोलिडम ने बताया कि मरने वालों में बचाव कर्मी भी थे। हमें खबरें मिली हैं कि घर तहस नहस हो गए हैं, बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, लेकिन भूस्खलन वाले इलाके बेगो में जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कॉर्डिलेरा से बुरी खबर है। तूफान की वजह से 51 दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें से 42 भूस्खलन है और 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मरने वाले बचाव कर्मी थे। वहीं सरकार के प्रवक्ता फ्रांसिस टोलेंटिनो ने बीबीसी को बताया कि कगियन प्रांत में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। कगियन प्रांत में 16-17 हजार हेक्टेयर की खेतीहर जमीन है। मुझे जानकारी मिली है कि इसमें से सिर्फ 20% पर ही फसलों की कटाई हुई थी, इसलिए धान और मक्के की फसल पर ज्यादा असर दिखेगा। फिलीपींस के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान साल 2013 में आया था, जिसमें 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जहां तक इस तूफान से निपटने की बात है तो फिलीपींस प्रशासन का कहना है कि वो पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में भी प्रशासन इस तूफान के आगमन से पहले ही सतर्क हो गया है और प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है।
फिलीपींस में तूफान से 14 लोगों की मौत, रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। उधर अमेरिका के पूर्वी तट पर नॉर्थ कैरोलिना में फ्लोरेंस तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर गया है। कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। लगभग 8 लाख घरों और इमारतों में बिजली नहीं होने के कारण अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत जॉन बेस ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग से व्यापार बहाली का प्रस्ताव रखा। इस दावे के बारे में बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत से बात की और जानना चाहा कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा भी है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं।
पाकिस्तान इस बारे में सीधे बातचीत हिंदुस्तान की क्यों समझू नहीं कर सकता है। जो हमारा वो कहता रहता है कि संवाद चलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान की सरकार भी मानती है कि बातचीत हमेशा के लिए खत्म नहीं की जा सकती, जब तक कि टेररिज्म चलता है तब तक बातचीत नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान अगर किसी को भी बीच में लाना चाहता है तो पाकिस्तान एक बायोलिटरल डिस्प्यूट को या बायोलिटरल जो भी टेंशन है उनको ट्राइलेटरल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल बनाने की कोशिश करता है। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां से अगर अमेरिका अफगानिस्तान के जरिए सड़क से क्यों व्यापार करना चाहता है हिंदुस्तान के साथ। मुझे बताइए कि अफगानिस्तान में कौन से इंटरेस्ट अमेरिका के इकोनॉमिक हैं जो पाकिस्तान के साथ रास्ता खोलने से हिंदुस्तान तक पहुंचते हैं, कि मतलब हिंदुस्तान का जो भी अमेरिका के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, उसमें मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही 40-50 साल से जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हुए, उसमें लैंड रूट कौन सा है। ये रैंकूट तो नेपोलियन के जमाने से अगर आप बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने की बात होती कि रशिया को बायपास करके वेस्टर्न कंट्रीज एक जर्मन रेलरोड लाइन पर पहुंचा रहे थे मॉस्को तक, और उसको रोकने के लिए ब्रिटिश काम कर रहे थे, अफगानिस्तान वाज अ बफर स्टेट। वो जमाना कब का लद गया, मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि अमेरिका कौन सी तजारत इस रस्ते करेगा अफगानिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एक तापी पाइपलाइन थी कि तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होकर हिंदुस्तान आई, मगर जब वो न्यूक्लियर करार 1-2-3 हुआ तो फिर वो पाइपलाइन खटारे में पड़ गई। अब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं और आज हम रूस की कंपैरिजन में अमेरिका के बहुत करीब हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप जब तक वहां प्रेसिडेंट हैं, वहां क्या पॉलिसी होगी, उसका क्या असर होगा, उसका कितना डैमेज कंट्रोल वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा, और कितना नुकसान जो अब तक पहुंचा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हमको हर चीज पे जो अमेरिकन स्टेटमेंट्स हैं उन पे बहुत इत्तेफाक करना नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल राय ये है।
जैसा कि आपने कहा कि सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात पहले सामने नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी पेशकश हुई हो, उसने ऐसा सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन अब अमरीकी राजदूत जो कि अफगानिस्तान में है, उन्होंने एक इंटरव्यू में अगर ये बात कही, तो क्या लगता है कि इस बयान के पीछे क्या वजह रही होगी?
मुझे लगता है उसका सीधा सीधा ताल्लुक जो चीन की वन बेल्ट वन रोड है जिसका हिंदुस्तान मुखालफत करता रहा है, एक तरह से नाक यूं नहीं पकड़ी, थोड़ा हाथ टेढ़ा ले जाके पकड़ी, तो अमेरिकन शायद प्रेशराइज ये करना चाहते हैं इस बहाने कि हिंदुस्तान अगर इसके लिए तैयार हो जाए तो वो काफी दिनों से हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के दलदल में फंसाने में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान अगर अपने को साउथ एशियन प्राइवेसी पावर की समझता है तो वहां इन्वेस्ट करे, $1 बिलियन तो हिंदुस्तान कर चुका है। वो चाहते हैं हम अपनी फौजों को हटा लें, हम अपनी लैंड फोर्सेज को वहां से बिल्कुल हटा लें और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान संभाल लें, मगर हम क्यों अफगानिस्तान में जाके उस दलदल में धंसे जहां न सोवियत यूनियन सक्सेसफुल हो पाया, ना अमेरिकन सक्सेसफुल हो पाए, ना कभी ब्रिटिश सक्सेसफुल हो पाए। बड़ा अच्छा है कि हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ रहे थे, मगर वो उस जमाने में थे जब काबुलीवाला और टैगोर की कहानी होती थी। मुझे लगता है कि तब से अब तक इतना पानी बह चुका है काबुल नदी में भी और हिंदुस्तान की नदियों में भी।
ये थे प्रोफेसर पुष्पेश पंत, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहिष्कार के बीच पंचायती और नगरीय निकायों में चुनाव की तारीख तय हो गई है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। जम्मू से मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर ने शहरी निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। शहरी निकाय के चुनाव 4 चरणों में होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शालीन काबरा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि राज्य में यह पहला मौका होगा जब निकाय चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।
क्योंकि ये इलेक्शंस पार्टी लाइंस पे हो रहे हैं, पार्टी बेस्ड हो रहे हैं, तो इन सभी की जो काउंटिंग है पोलिंग खत्म होने के बाद में की जाएगी और इस कारण से जो काउंटिंग की तारीख है वो 20 अक्टूबर रखी गई है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल उठाया है। उनका कहना है कि चुनावों को जल्दबाजी में आयोजित करवाया जा रहा है। दरअसल दोनों ही पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A पर चल रही सुनवाई पर केंद्र सरकार के रुख से नाखुश हैं और दोनों ने ही पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में तब तक हिस्सा नहीं लेगी जब तक राज्य और केंद्र सरकार 35A के मामले पर अपना रुख साफ नहीं करती और 35A की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते।
अपने प्रतिद्वंदी दल के इस फैसले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो इसे एक कदम आगे जाकर ये तक कह दिया था कि अगर केंद्र 35A पर अपना रुख साफ नहीं करता तो निकाय चुनावों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था,
मौजूदा हालातों में किसी भी तरह के चुनाव होने से पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता कम हो जाएगी क्योंकि ये जनता की मर्जी के खिलाफ होंगे। हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इन हालातों में निकाय चुनाव करवाने के बजाय जनता में भरोसा पैदा करने के लिए कदम उठाए, इसलिए एकमत से पार्टी ने फैसला किया है कि वो चुनावों का बहिष्कार करेगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा,
कुछ राजनेता और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लैकमेलिंग कर रही थी। वो बॉयकॉट का डरावा दिखाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल महोदय को और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने निर्णय लिया है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की और ऐसे लोगों की परवाह नहीं की है। चुनाव होना चाहिए। पिछले 10 सालों से अर्बन लोकल पार्टी शहरों के चुनाव नहीं हुए थे, जिसके चलते अरबों खरबों रुपया केंद्र सरकार के पास रुका पड़ा है क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की साझा सरकार गिर जाने के बाद से ही राज्यपाल शासन लागू हुआ है। साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई जनवरी 2019 में है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थानीय नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है इसे हटाना राज्य के हित में नहीं है और केंद्र सरकार जब तक अपना रुख इस पर साफ नहीं करेगी तब तक राज्य में चुनाव नहीं करवाए जाने चाहिए। मोहित कंधारी, बीबीसी जम्मू।
भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने क्या कहा और उसके क्या मायने हैं, जानने के लिए आदर्श राठौड़ ने हैदराबाद में वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से बात की।
दो बातों पे ज्यादा जोर था अमित शाह का। एक तो ये कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो सरकार है तेलंगाना में, वो तमाम मोर्चों पर असफल हो गई है और जो वादे के चंद्रशेखर राव ने किए थे 2014 में, उनमें से कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा उनका सवाल ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का नारा दिया था और कहा था कि लोकसभा और असेंबलियों के जो चुनाव हैं एक साथ होने चाहिए, तो के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आगे बढ़कर इसका समर्थन किया था। तो फिर अमित शाह का सवाल था कि अचानक उन्होंने ये विधानसभा चुनाव पहले क्यों करवाने की बात शुरू कर दी है। तीसरा जो हमला उनका था वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संदर्भ में था। उनका कहना था कि तेलंगाना राष्ट्र समिति और के चंद्रशेखर राव की सरकार वोट बैंक की राजनीति पे चल रही है। मुसलमानों का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि खुशामद की पॉलिसी है और मजलिस के इशारे पर ही केसीआर काम कर रहे हैं। और इससे ज्यादा शायद बड़ा हमला ये था कि उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य का विलय हुआ था भारत यूनियन में, तो उनका सवाल ये था कि क्यों तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार जो है उसको सरकारी दिन के तौर पे नहीं मनाती है। और सबसे शायद अहम उनका रिमार्क ये था कि अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति दोबारा वापस आई सरकार में तो वो इसी राजनीति को जारी रखेगी और आज के रजाकार, जैसे आप जानते हैं कि उसका संदर्भ ये है ऐतिहासिक के निजाम के दौर में जो अर्धसैनिक बल की तरह रजाकार थे, तो उनका कहना था कि आज के दौर में मजलिस वही रजाकार है और उसके हाथ में राज्य चला जाएगा। और एक अमित शाह ने जो मुस्लिम राजनीति के हवाले से जो बात कही है वो ये है कि केसीआर लगभग 4 वर्षों में ये वादा भी करते रहे, उन्होंने कोशिश भी की कि मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को राज्य में जो 4% आरक्षण प्राप्त है उस कोटे को बढ़ाकर 12% किया जाए, ये उनका मुख्य वादा था। और इसका जो संबंधित बिल था वो विधानसभा में पास भी हुआ था और उसको केंद्र के पास भिजवाया गया था मंजूरी के लिए और वहां पे केंद्र ने उसको मंजूर करने से मना कर दिया। तो अमित शाह का कहना था कि ये जो इस तरह का आप 12% की बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, ये भी आप मुसलमानों को खुश करने की कोशिश है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो जाहिर सी बात है कि इनके इन शब्दों से ये संदेश जा रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तेलंगाना राज्य में।
बीजेपी ने ऐलान तो किया है सभी सीटों पे अलग चुनाव लड़ने का, लेकिन उसकी संभावनाएं कितनी नजर आती हैं?
दावे तो बड़े बड़े हुए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। खुद अमित शाह बार बार आते रहे तेलंगाना और उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए हैदराबाद में। लेकिन अगर आप चुनावी नक्शे पे नजर डालें तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शक्ति नहीं है तेलंगाना में। 2014 में उसे केवल 5 सीटें विधानसभा की, 1 लोकसभा की सीट जीत सकी थी। अभी भी अगर आप देखें तो एक तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति है, दूसरी तरफ कांग्रेस, तेलुगु देशम और दूसरी पार्टियों का गठबंधन होगा जिसकी प्रक्रिया जारी है, और तीसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी होगी पूरे राज्य में। शायद उनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े करने के लिए, हर चुनाव क्षेत्र में खड़े करने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल पाएंगे।
ये थे हैदराबाद से वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल में सरकारी अनुदान से चल रहे एक हॉस्टल में मूक बधिर बच्चों के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए आदर्श राठौड़ ने भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से बात की।
देखिए ये भोपाल का जो इलाका है बैरागढ़, और वहाँ के ऊपर ये उसका सेंटर था, और सेंटर को सबसे बड़ी बात ये कि सरकारी मदद मिल रही थी, और ये मूक और बधिर लोगों को जो एक तरीके से आप कह सकते हैं विकलांग की श्रेणी में भी आते हैं उनकी देखभाल करने के लिए हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से इनको बाकायदा अनुदान मिल रहा था। जो पीड़ित लोग कह रहे हैं वो तो 2004 से चल रहा है। ये पहले हॉस्टल जो था ये होशंगाबाद में था, होशंगाबाद में है भी, उसका एक और मतलब साई हॉस्टल के नाम से भोपाल में बैरागढ़ के इलाके में उसको कायम किया गया, और उसियों तक को भनक नहीं लगी। हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे थे लड़के लड़कियां वो बहुत ही गरीब घरों से थे, मतलब माँ बाप उन्हें पाल पोस नहीं पा रहे थे, तो वहाँ छोड़ के चले जाते थे, और कहते थे कि शनिवार का नाम सुन के ही उनको डर लगता था क्योंकि शनिवार को संचालक आते थे और कथित रूप से शारीरिक शोषण करते थे। तो ये तमाम चीजें इतने साल पर्दे में कैसे रही। ऐसा भी कहा गया है कि पिछले साल भी कुछ मामला दर्ज हुआ था लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ। पिछले दिन जो ये मूक बधिर पीड़ित लोग थे ये सरकारी दफ्तर में गए और उन्होंने डस्ट थपथपा करके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहा लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिला।
जी ये मामला सामने कैसे आया?
जो मामला सामने आया है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बाहर आया, जहां पीड़ित लोगों ने जो था मूक बधिर युवतियों और चार युवकों ने जो था वो इल्जाम लगाया कि संचालक जो है वो उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। बताया जाता है एक एनजीओ सेक्टर में काम करने वाली जो जिनको मूक बधिर उसकी भाषा भी आती है उन्होंने ये खुलासा किया और वो कांग्रेस के संपर्क में आई, और फिर कांग्रेस ने अपने कार्यालय से जो था जो स्थानीय कार्यालय है भोपाल में वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया।
अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में?
पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, जो संचालक है एमपी अवस्थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने जो बातें बताई हैं वो तो बहुत ही न सिर्फ चौंका देने वाली बात है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये बड़ा ही गंभीर मामला प्रथम दृष्टि में नजर आता है।
ये थे भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के 6 जिलों में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। धेमाजी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुने।
जब शाम होने लगा तो इतना स्पीड पानी आया था, हम लोग तो तीनों लेडीज थे घर पर। उसके बाद में गांव वाला को बुलाते फोन का जरिए हम गांव वाला को बुलाए, 7 बजे शाम को हम सब निकल गए।
ये आवाज 35 साल की ज्योति साहू की है जिसका घर बाढ़ के पानी में डूब गया है, और वो अब अपने 3 बच्चों के साथ प्लास्टिक के तंबू में दिन गुजार रही है। इस समय असम के 6 जिले बाढ़ की चपेट में है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से शनिवार की शाम को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम चरण की इस बाढ़ में 337 गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि 1,38,000 से भी अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस बार की बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान धेमाजी जिले में हुआ है।
बहुत खत्म हुआ, घर ही बर्बाद हो गया, हम लोग बर्बादी हो चुके कुछ। और पानी अभी भी हमारे पुराना घर पर, जो हम लोग अभी तो बाहर हैं वहाँ घर पर अभी भी रहने लायक नहीं है।
असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में पानी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। धेमाजी जिले में रेलवे पुल का एक बड़ा हिस्सा जियाधाल नदी के पानी में बह गया, जिससे इस मार्ग पर रेलवे यातायात पूरी तरह ठप है। धेमाजी जिला उपायुक्त रोशनी कुरायती कहती है,
एक्चुअली सी वाटर हैज कम फ्रॉम अरुणाचल, और इधर का भी रेन वाटर था। मैं आज तो कल से बहुत बेहतर है, तो पानी तो कम हो गया था, और रेलवे ट्रैक जो वॉश कर चुका है अराउंड 30 मीटर अप्रोक्सीमेटली का, तो ये रिपेयर वर्क चल रही है, तो मे बी टुमारो डे आफ्टर इट शुड बी डन।
ब्रह्मपुत्र किनारे बसे इन जिलों में हर साल बाढ़ को लेकर लोगों में चिंता बनी रहती है। इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन में 52 लोग मारे गए हैं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आज रविवार है और हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा, जिसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने, और पेश कर रही हैं सर्वप्रिया सांगवान।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज की मौत और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद से एक अहमदिया मुसलमान का हटाया जाना सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज की मौत की। पिछले कई महीनों से बीमार और लंदन में इलाज करवा रही कुलसुम नवाज का 11 सितंबर को लंदन के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर लंदन से लाहौर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। अखबार जंग के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं समेत हजारों लोग कुलसुम नवाज के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, बेगम कुलसुम आहों सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद से एक अहमदिया मुसलमान को हटाए जाने की। जमीयत उलेमा इस्लाम के केंद्रीय प्रवक्ता हाफिज हुसैन अहमद ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद से जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर आतिफ मियां को निकाले जाने का स्वागत किया है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके चुनाव जीतने वाले इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार परिषद में डॉक्टर आतिफ मियां को शामिल किया था। उनका संबंध अहमदिया संप्रदाय से है। उनकी नियुक्ति की खबर आते ही पाकिस्तान के धार्मिक गुटों और कुछ राजनेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इमरान खान इसके दबाव में आ गए और आतिफ मियां को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। अखबार दुनिया में संपादकीय पेज पर खालिद मसूद खान ने एक कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसे फैसले करने ही नहीं चाहिए जिससे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। खालिद मसूद खान ने लिखा है कि अहमदिया लोग अगर खुद को गैर मुसलमान अल्पसंख्यक मान ले तो उन्हें पाकिस्तानी संविधान के अनुसार पूरे अधिकार मिलेंगे, लेकिन अहमदिया लोगों के साथ समस्या ये है कि वो खुद को मुसलमान मानते हैं लेकिन पाकिस्तान के कानून के अनुसार उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। अखबार जंग के मुताबिक पाकिस्तानी मूल के ब्रितानी क्रिकेटर मोइन अली ने कहा है कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने उन्हें ओसामा कहा था। हालांकि मोइन अली ने ये नहीं बताया है कि उस खिलाड़ी का नाम क्या है। मोइन अली ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। उनके अनुसार 2015 एशेज में कार्डिफ टेस्ट के दौरान जब वो बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे तो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने उन्हें ओसामा कहकर बुलाया था।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की समीक्षा के बाद अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले के साथ ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को 137 रनों से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 262 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 35.2 ओवर में ही महज 124 रनों पर ढेर हो गई। इससे पहले आत्मविश्वास से भरी बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 49.3 ओवर में 261 रन बनाए। हालांकि एक समय लसित मलिंगा की घातक गेंदबाजी के कारण उसके दो विकेट महज एक रन पर गिर गए थे, जब सलामी बल्लेबाज लिटन दास और साकिब अल हसन खाता खोले बगैर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद मलिंगा के झटकों से उभरते हुए बेहद अनुभवी मुशफिकुर रहीम के 144 रनों की शतकीय पारी और मोहम्मद मिथुन के 63 रनों की मदद से बांग्लादेश 261 रन बनाने में कामयाब रहा। मोहम्मद मिथुन और मुशफिकुर रहीम के बीच तीसरे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी हुई। श्रीलंका के लसित मलिंगा ने 23 रन देकर 4 और धनंजय डी सिल्वा ने 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की हार तब तय हो गई जब उसके 5 विकेट केवल 60 रन पर गिर गए। श्रीलंका के उपुल थरंगा ने 27, सुरंगा लकमाल ने 20 और कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 16 रन बनाए। इनके अलावा दिलरुआन परेरा ने भी 29 रन बनाए। अंततः श्रीलंका की टीम 35.2 ओवर में 124 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा, मुशफिकुर रहमान और मेहंदी हसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। आज एशिया कप में ग्रुप ए में पाकिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। उधर बांग्लादेश में कल सैफ का फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, जिसे मालदीव ने भारत को 2-1 से हराते हुए अपने नाम किया।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचार सुनने के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
फिलीपींस के उत्तरी इलाके में तबाही मचाने और कम से कम 14 लोगों की मौत के बाद मैंगकूट तूफान भारी जनसंख्या वाले चीनी प्रांत गुआंगडोंग की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के रास्ते में हांगकांग भी है और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान बारिश के साथ शहर के लिए खतरा है। वहीं तूफान फ्लोरेंस की वजह से अमेरिका के उत्तरी और दक्षिण कैरोलिना राज्यों से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में अरबों रुपए का सैटेलाइट भेजा है जो पता लगाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे धरती की बर्फीली परत घट रही है। सैटेलाइट का नाम आईसेट 2 है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार या मंगलवार को लगभग 200 अरब डॉलर के चीनी आयात पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान और स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन सुनना ना भूलें दिन भर शाम 7:30 बजे BBCHindi.com। तब तक आपके साथ है।